नमस्कार, जनसत्ता वीकेंड पॉडकास्ट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी दुनिया की कहानियाँ। अब फिल्मों में खलनायिकाएं कम ही देखने को मिलती हैं, जबकि पहले उनके बिना फिल्में अधूरी सी लगती थी। अगर हम खलनायकों को फिल्म का अहम पात्र मानते हैं तो खलनायकों की अहमियत भी किसी भी कीमत पर कम नहीं आंकी जा सकती है। पहले खलनायक सेठ, साहूकार, जमींदार, ठेकेदार, रसूखोर, लाला या लंपट बनिया हुआ करता था, जो नायक नायिका और जनता का केवल शोषण करते थे। आज खलनायक का रूप बदला है, अब उसकी शक्ल तस्कर, देशद्रोही, बदमाश, गुंडा या भ्रष्ट नेता की बन चुकी है। खलनायिका का रूप भी ऐसा ही हुआ करता था। खलनायिकाओं के रूप में थोड़ी आधुनिकता महसूस की जा सकती है। नादिरा को एक नर्तकी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वो खलनायिका के रूप में ही ज़्यादा जानी गई। महबूब खान की फिल्म आन में वो दिलीप कुमार की नायिका थी, ये उनकी सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। दिल अपना और प्रीत पराई उनकी खलनायकी के रूप में बेहतर फिल्म है। बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू करने वाली बिंदु मशहूर रंगकर्मी फरदून ईरानी की बेटी हैं। 1940 में फिल्म मिट्टी और सोना में वो खलनायिका बनकर आई। 1969 में फिल्म दो रास्ते में पहली बार खलनायिका बनी, फिर नतीजा में विनोद खन्ना के साथ खलनायिका बनी। फिल्मकार सावन कुमार ने इसी फिल्म से फिल्म ही बना डाली, जिसमें अनु अग्रवाल खलनायिका बनती हैं, जो जयप्रदा को बर्बाद करने पर तुली रहती हैं। पहले नारी प्रधान फिल्में बनती थीं जिनमें खलनायिकाओं के लिए अलग पटकथा होती थी, लेकिन धीरे धीरे पटकथा लिखने का चलन खत्म सा हो गया। हिंदी फिल्मों की सबसे सशक्त खलनायिका ललिता पवार को माना जाता है। उन्होंने कुटिल सास, अशिष्ट पड़ोसन, गद्दार व लालची रिश्तेदार, इर्शालू सौतेली माँ जैसी नफरत भरी निगाहों से देखे जाने वाले किरदारों को इतनी जीवंतता से पर्दे पर पेश किया कि फिल्मी इतिहास उन्हें शायद ही भुला पाए। यही कारण है कि पर्दे पर उनके आते ही दर्शकों के चेहरे घृणा भाव से भर जाते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पात्र को कितनी जीवंतता से जिया। याद कीजिए ओपी रलहन की फिल्म फूल और पत्थर की, वो क्रूर सास जिसने अपनी बहू शांति पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। शांति मरणासन स्थिति में होती है और वो उसे पहली मंजिल के एक कमरे में अकेली छोड़ जाती है, जहां उसे कोई पानी देने वाला तक नहीं होता है। ऐसे में शांति को देखकर उस चोर का भी दिल तड़प उठता है जो उस घर में चोरी करने आता है। वो चोरी का इरादा छोड़कर शांति को बचा कर ले जाता है। ये तो ललिता पवार के फिल्मी चरित्र की क्रूरता का एक और उदाहरण भर है। 1950 में वी शांताराम की फिल्म दहेज में वो पहली बार खलनायिका बनी थी। इस फिल्म में वो जयश्री की कुटिल सास बनी थी। शशिकला भी अपने समय की मशहूर खलनायिका रही। वो नर्तकी भी थी और उन्होंने नायिका की भूमिकाएं भी की। फूल और पत्थर में वो नर्तकी और खलनायिका थी। शशिकला का काम नायक को फंसाकर अपने बॉस का काम कराना या फिर नायक को अपने हुस्न जाल में फंसाकर नायिका के जीवन में जहर घोलना होता था। वो गैंग की खास सदस्य के रूप में काम करती थी। हेलन ने जहां नृत्य में अपना नाम कमाया, वहीं वो खलनायिका भी किसी से कम नहीं रही। वो क्रूर सास, सौतेली माँ या भाभी को परेशान करने वाली ननद नहीं बनी, बल्कि गैंग की सदस्य ज़्यादा रही। उनका काम नायक नायिका से गैंग के लिए काम कराना या नायक को अपने जाल में फंसाना होता था, अपने बॉस को खुश रखना। बर्मा से आई इस अभिनेत्री ने चंगेज खान, एक फूल चार कांटे, अमीर गरीब, सन्यासी, द ग्रेट गैम्बलर, डॉन और दोस्ताना जैसी अनेक फिल्मों में यादगार रोल किए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।